بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا کہ سوال کرتے ہیں انسان تجھ سے قیامت کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ شاید کہ وہ گھڑی، یا تو نہیں جانتا کہ شاید کہ وہ گھڑی قریب ہی ہو، قیامت کا وقت جو ہے وہ قریب پہنچ چکا ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، کہ بے شک اللہ تعالی لعنت کرتا ہے کافرین کے اوپر، کافروں کے اوپر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سعیر یعنی دہکتی ہوئی آگ. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر. لا یجدون ولی ولا نصیرہ، نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، یعنی کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے چہرے آگ کے اندر، یعنی وہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے آگ کے اندر. یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، کہ اے کاش کتنا اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ ہم نے اطاعت کری ہوتی اللہ کی اور اطاعت کری ہوتی رسول کی. وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا، کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کری اپنے سرداروں کی، سادتنا وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی. فاضلون السبیلا، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہٹا دیا راستے سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب، دیجئے ان کو دگنا عذاب، عذاب میں سے دو حصے. ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان کے اوپر بہت بڑی لعنت اور پھٹکار کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. خلاصہ تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں کہ یہ منکر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق منکرانہ سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگی، یعنی یہ سوال جو ہے وہ طالب علمانہ نہیں کرتے بلکہ منکرانہ کرتے ہیں، یا منکرانہ کرتے ہیں، انکاری کے نیت سے کرتے ہیں، اعتراضی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سوال طالب علمانہ یہ تو انکریجڈ ہے، لیکن اعتراضانہ سوال یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ ڈسکریجڈ ہے. ان کے اوپر تو اعتماد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی تو تصدیق کی جاتی ہے، ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو سوال کی نوعیتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان سے سوال اچھا اور برا ہو جاتا ہے. تو آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے کہ اس کے وقت کی خبر بس اللہ ہی کے پاس ہے، اور یعنی قیامت کس وقت آئے گی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. قیامت میں کیا کیا احوال ہوں گے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کافی بتائے، کافی شافی بتائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائے. تو بہت ساری حدیثیں قیامت کے احوال کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں کہ کب کیا ہوگا، یعنی کیسے ہوگا، یہ ہوگا، اس کے بعد ایسے ہوگا، اس کے بعد ایسے ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. تو آپ کو کیا خبر کہ کب ہے؟ البتہ اجمالاً ان لوگوں کو جان رکھنا چاہیے کہ عجب نہیں کہ قیامت ابھی واقع ہو جائے، کیونکہ جب کوئی وقت متعین نہیں ہے تو قریب زمانے میں اس کے واقع ہو جانے کا بھی احتمال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جس کا مقتضی یہ تھا کہ یہ لوگ انجام سے ڈرتے اور اس کی تیاری میں لگتے، منکرانہ سوالات اور استہزاء سے بچتے. ٹھیک ہے بھائی، نہیں پتا نا، تو اب نہیں پتا تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، دیر سے بھی اور قریب سے بھی. تو قیامت کو قریب فرمانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت ہر روز قریب ہی ہوتی جا رہی ہے، और जो चीज सामने से आ रही हो उसको करीब ही समझना दानिशमंदी है। ठीक है, यानी कोई चीज आ रही है या आप उसकी तरफ बहुत तेज स्पीड के साथ अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर उसको करीब ही समझना चाहिए कि भाई आज नहीं तो कल वहां तक पहुंच जाएंगे, या वो हमारी तरफ आ रही है तो पहुंच ही जाएगी हम तक। तो इस लिहाज से भी कयामत को करीब कहा जा सकता है कि कयामत के हौलनाक वाकयात और इश्तेदात के पेश नजर सारी दुनिया की उम्र भी कलील नजर आएगी और हजारों साल की ये मुद्दत चंद रोज की के बराबर महसूस होगी। और जैसा कि एक और यानी बात बताई जाती है कि हर इंसान की कयामत तो उसकी मौत से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका हिसाब किताब और उसके जन्नत जन्नत और जहन्नम के फैसले ये उसके लिए मौत के फौरन बाद शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हदीसों में आता है कि जब मलकुल मौत यानी जब मौत का वक्त आ जाता है तो फरिश्तों की एक जमात इंसान के पास आती है। ठीक है, अगर वो जन्नती आदमी है तो वो जन्नत का कफन लेकर के आते हैं, और वो जन्नत का कफन जाहिर है कि बहुत ही अच्छा कफन होता है। ये वो वाला कफन नहीं जो इंसानों ने पहुंचा ने उसको पहनाना होता है, बल्कि जन्नत का कफन होता है और उस कफन में से बेहतरीन खुशबू आ रही होती है। दुनिया में जो बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू है उस कफन से वो खुशबू आ रही होती है। ठीक है, तो जाहिर है उसको देख करके इंसान को अंदाजा हो जाता है। फिर ये पूरी की पूरी फरिश्तों की जमात इंसान के पास आ जाती है और फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और वो इस आदमी की रूह को कब्ज करते हैं। ठीक है, और वो कब्ज कैसे करते हैं कि जैसे मिशकीजे के अंदर पानी होता है और अगर आप मिशकीजे का मुंह खोल दें तो पानी खुद ब खुद मिशकीजे से बाहर निकल जाता है ना, उसको मिशकीजे को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको निचोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे वो रूह जो है इंसान के यानी मोमिन बंदे के अंदर से निकल करके मलिकुल मौत के हाथ में आ जाती है और फिर इमीडिएटली जो मलिकुल मौत के पीछे टीम लगी होती है वन्नाज़िआत गर्क़ा वन्नाशितात नश्ता वस्साबिहात सबहा, ये सारी की सारी टीम, ठीक है ना, तफसीर में आपने पढ़ा था, तो वो टीम इमीडिएटली मलिकुल मौत से उस रूह को अपने हाथों में ले लेती है और फिर उस रूह को लेकर के आसमानों की तरफ प्रवास कर जाती है। पहले आसमान के दरवाजे को खटखटाती है, फिर दरवाजा खुलता है, फिर वो पहले आसमान से ट्रेवल करते हुए ऊपर जाती है, दूसरे आसमान का दरवाजा खटखटाती है, फिर वो खुलता है, फिर उससे ट्रैवल करते हुए तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें तक पहुंचती है। जब सातवें आसमान पे पहुंच जाती है, आसमान के ऊपर यानी पहुंच जाती है सातवें आसमान, तो फिर अल्लाह ताला की आवाज आती है कि मेरे बंदे के जो नामे आमाल है उसको इलीजीन में रख दो, राइट, इलीजीन में रख दो और इसको फिर जमीन में वापस लौटा दो, यानी ये जो रूह तुम लेकर के नीचे से ऊपर आए हो ना इसको वापस इसके बदन में लौटा दो, इसकी कब्र में लौटा दो, क्योंकि मैंने इसको वहीं से जमीन से पैदा किया और मैं इसको जमीन ही से उठाऊंगा दोबारा। ठीक है, तो ये सारे अहवाल जो है ये मौत के इमीडिएटली बाद शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, हत्ता के कब्र में दफन होने का भी इंतजार नहीं किया जाता, तो इंसान की कयामत उसी वक्त शुरू हो गई। तो ये तो बहुत करीब है, क्योंकि मौत का वक्त तो हमारा लिटरली करीब है ना, हमें तो अंदाजा ही नहीं कि हमारी मौत जो है वो दीवार के पीछे हमारा इंतजार कर रही है या कितनी देर में आ जाने वाली है। तो कयामत के करीब होने के फिर यानी एक मफहूम ये भी निकल सकता है। तो फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने काफिरों को रहमत से दूर कर रखा है, इन्नल्लाह लानल काफिरीना, और उनके लिए, क्योंकि लानत का तर्जुमा रहमत से दूरी होती है, और उनके लिए आतिशे सोजा तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे और ना कोई यार पाएंगे और ना कोई मददगार, जिस रोज उनके चेहरे दोजख में उलट उलट किए जाएंगे, यानी चेहरों के बल घसीटे जाएंगे, कभी चेहरे के इस करवट पर कभी दूसरी करवट पर, यानी तकलीफ देना मकसूद है, तो पैरों के ऊपर उनको चला के नहीं ले जाया जाएगा बल्कि चेहरों के बल घसीट करके ले जाया जाएगा। और इस वक्त गायत हसरत से यूं कहेंगे कि ऐ काश हमने दुनिया में अल्लाह की अतात की होती और हमने रसूल की अतात की होती तो आज इस मुसीबत में मुबतला ना होते। और हसरत के साथ अपने गुमराह करने वालों पर गुस्सा आएगा तो वो यूं कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हम अपने सरदारों का यानी अहल हुकूमत का, यानी जो हमारे अहल इक्तदार लोग थे, चाहे बेशक यानी कबीले के सिस्टम में रहते हो तो कबीले के जो सरदार थे, या किसी यानी स्टेट के सिस्टम में रहते हो तो स्टेट का जो गवर्नर था, या पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में वजीर आजम साहब थे, या जो है वो प्रेजिडेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेजिडेंट साहब थे, ठीक है, तो जो भी अहल हुकूमत थे, और अपने बड़ों का यानी दोनों को अलग अलग रखा, अहले हुकूमत यानी सियासी तौर पर जो जो बड़े होते हैं वो हो गए सादतना के अंदर, और फिर जो घरेलू एतबार से बड़े होते हैं वो कुबराना हो गए, ठीक है, या घरेलू एतबार से बड़े हुए, या दीनी एतबार से बड़े हुए, या जो है वो ऐसे ही मुआशरती एतबार से जो जो मोहल्ले के बड़े होते हैं, या जो यानी कम्युनिटी सिस्टम के जो बड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी इज्जत की जाती है, यानी इज्जत वाले, ठीक है ना, ये कौन लोग हैं, साथ कुबरा आना, जिनकी इज्जत की जाती है। हुक्मरानों की हमेशा इज्जत नहीं की जाती, हुक्मरानों की बात मानी जाती है। क्यों? इसलिए कि अगर नहीं मानेंगे तो वो सजा देंगे। उनके पास पुलिस फोर्स होती है, उनके पास प्रिजन सिस्टम होता है, उनके पास अदलिया होती है, इस वजह से उनकी बात मानते हैं। और जो कुबरा ना होते हैं, उनकी बात उनकी बुजुर्गी की वजह से मानते हैं, राइट, उनके मुकाम की वजह से बात मानते हैं, जैसे जैसे वालिदैन, ठीक है, जैसे कि दादा दादी नाना नानी और इस तरह के दूसरे लोग, तो जिनमें किसी दूसरी वजह से ये सिफत पाई जाती थी कि उनकी बात मानना और इत्तेबा करना हमारे जिम्मे जरूरी था, ठीक है, यानी जिम्मे जरूरी था इनकी बात मानना, कहना माना था, तो यानी हमने उनका कहना माना था, सो उन्होंने हमको सीधे रास्ते से गुमराह किया, ए हमारे रब, उनको दोहरी सजा दीजिए और उन पर बड़ी लानत कीजिए। ये ऐसा मजमून है जैसा सूरह आराफ के चौथे रुकू में पहले आ चुका है, रब्बना हा उलाई अवलूना वआतहिम अज़ाबन ज़िफ़न फिन्नारे, ठीक है, कि ए हमारे रब, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमें गुमराह किया, बस इनको दुगना अजाब दीजिए जहन्नुम में, जिसका जवाब उसी आयत में बयान फरमाया है, लिकुल्ले ज़िफ़न, ठीक है, कि हर एक के लिए दुगना अजाब है, यानी जिन्होंने गुमराह किया और जिन जिनको गुमराह किया, दोनों के लिए दुगना अजाब है। अब इसके ऊपर सवाल ये पैदा होता है, वैसे मारूफ मिसाल की चार लाइनें पढ़ लेते हैं, उसके बाद साबित आयात में अल्लाह और रसूल की मुखालफत करने वालों को दुनिया और आखिरत में लानत और अजाब की वईद सुनाई गई थी, और कुफार के बहुत से फिरके खुद कयामत और आखिरत ही के मुनकर थे, यानी कुफार के सारे फिरके कयामत के मुनकर नहीं होते, ठीक है, जैसे कि आप लोग तो बयानात में कई दफा सुन चुकी होंगी साजिद से, कि यानी बहुत से काफिर ऐसे भी होते हैं जो कि कयामत के लिए अमल कर रहे होते हैं, लेकिन कयामत के लिए अमल करने वालों का भी अमल कबूल नहीं होता, उसकी वजह भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकार की वजह से बतौर इस्तेजा की पूछा करते थे कि वो कयामत कब आएगी। आखिर सूरत में उनका जवाब मस्कूरा आयात में दिया गया है, जिसकी तफसीर ऊपर आ चुकी है, ठीक है, जब कयामत के लिए अमल करते थे तो फिर जहन्नुम में क्यों जाएंगे, हमने तो अब हमने तो यही सुना था ना कि जी जिसके लिए अमल करते हैं तो वहीं पर जजा मिलती है, तो जब आखिरत के लिए अमल करते थे तो फिर क्यों नहीं मिलेगी जन्नत उनको, बता सकते हैं, जब उनके अमल आखिरत के लिए होते थे तो फिर क्यों नहीं आखिरत मिलेगी, क्या मतलब है ईमान नहीं, ये तो बात नहीं, आखरत पर ईमान, और आखरत किसने बनाई, अल्लाह ने बनाई, ईमान तो है, नजर तो आता है, बाजार तो ऐसे लगता है कि ईमान है, ये तो जवाब ना आप किसी को दे नहीं सकते, असल में मैं आपको ना उस जवाब तक ले जाना चाहता हूँ जो कि आप किसी को दे भी सके ना, और वो आपकी बात को मान भी सके, समझ में भी आए ना, उसके बाद ऐसे तो नहीं कि जी किताब में पढ़ी हुई बात जो है वो ऐसी बयान कर दी और फिर उस बंदे पे छोड़ दिया कि जी तुम्हारा मसला है कि उसको समझो मेरी बात को, समझाने की कोशिश भी तो करनी चाहिए ना, ताकि उसके इश्कालात रफा भी तो हों सवाल पूछने वाले के जहन क्लियर भी तो हो, जी तो जब आखिरत के लिए अमल कर रहा है और आखिरत खुदाई ने बनाई होती है, तो फिरौन ने तो आखिरत नहीं बनाई होती, तो फिर उसको क्यों नहीं आखिरत में अजर मिलता, गलती क्या होती है इससे, क्या गलती होती है भाई, अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता लगा, अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिखा है मारिफ मसाइल में कि कुफार के बहुत से फिरते खुद कयामत और आखिरत ही के मुनकिर थे, ठीक है, तो इस जुमले से क्या पता लगता है कि बहुत से फिरके मुनकिर थे और बहुत से फिरके मुनकिर नहीं भी थे, यानी बहुत से काफिर के कुफार के फिरके ऐसे भी हैं जो कयामत का इनकार नहीं करते। ठीक है, तो जब वो कयामत का इनकार नहीं करते जी, क्या जवाब है? जवाब देंगे तो आगे बढ़ेंगे फिर। इसलिए कि अगला सवाल जो है वो भी उसका भी यही जवाब है। अगला सवाल कैसे करूं जब आप पहले सवाल जवाब नहीं दे पा रहे? मर्दों में पिछले दिनों एक क्लास हुई थी, दीन एसेंशियल्स फॉर मेन वाली क्लास थी, उसमें भी कुछ इसी किस्म का सवाल किया था शायद उसने। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है, मजे की बल्कि मजे का तो मैं लफ्ज बाम यानी मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, अफसोस की बात यह है, अफसोस, ठीक है ना, अफसोस की बात यह है कि उनमें से भी कोई जवाब नहीं दे पाया था काफी देर तक। बिलआखिर एक साहब ने सही जवाब दिया था, लेकिन काफी देर तक सही जवाब नहीं दे पाए थे। ठीक है ना, तो ये जो मामला था ना, ये अफसोस का भी मामला था और ये बल्कि खौफ का भी मामला है, डर और खौफ। तो उन मर्दों को भी यही कहा था साजिद ने कि डर लगता है, अल्लाह ताला के गुस्से से डर लगता है कि हमारा जहन जो है ना वो क्यों नहीं जा रहा सही जवाब की तरफ, इस पर अल्लाह से डर लगता है, खौफ आता है कि हमारा जहन उस जवाब की तरफ जा क्यों नहीं, क्यों नहीं जाता हमारा हमारा। अच्छा चले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो आखिरत को जो मानते थे तो वो क्या उन्होंने खुद आखिरत को देखा था? आपका भी जहन अभी तक नहीं गया सही जवाब जवाब तक। ठीक है भाई, आखिरत कल आपकी क्लास में बात हुई थी या किसी और का कि आखिरत के बारे में जो मामला यानी मालूमात हैं वो नफ्स तो नहीं बता सकता आपको। आप कह रही हैं ना कि जिन्होंने अपने नफ्स की अताअत की थी, तो नफ्स ने उनको आखिरत के बारे में बताया था? नफ्स के पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो आखिरत की खबरें आपको दे सके। ठीक है ना, नफ्स कोई जिन नहीं है, राइट? जिन जो होते हैं ना वो आसमानों में सफर करते हैं और वो फरिश्तों को भी देख लेते हैं, तो उनको पता होता है कि ये आखरत है, उन्होंने देखा होता है इस तरह के मामला को ना, रूहानी मामला को। नफ्स कोई थोड़ी है जिन, ठीक है, तो नफ्स को क्या पता आखरत के बारे में? तो ये जवाब भी सही नहीं तस्लीम किया जा सकता। अच्छा, नहीं, आखरत के बारे में तो उनको बताया गया था किसी रसूल ने, नबी सलातो सलाम को नहीं मानते थे। अच्छा, को नहीं मानते थे, बड़ों के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं अमल करते थे, उन पर ईमान नहीं लाए थे। जी, उन पर ईमान नहीं लाए थे, इसी को जरा दूसरे अल्फाज में कर देना, वो जो आखिरत के लिए अमल करते थे वो अपने वक्त के नबी की अताअत करके नहीं करते थे, अपने वक्त के नबी की अतात की वजह से आखिरत के अमाल नहीं करते थे, बल्कि किसकी अतात करते थे? वो अपने वक्त के नबी का इनकार करते थे। ठीक है ना, ये जो काफिर है ना, जो कि आखिरत के लिए अमाल करते थे लेकिन उनके अमाल रद्द कर दिए जाएंगे आखिरत में। क्यों रद्द कर दिए जाएंगे? क्योंकि ये जो अमाल वो करते हैं आखिरत के लिए, ये अपने वक्त के नबी की अतात करके नहीं करते थे। ठीक है ना, ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आखिरत की जो नॉलेज है ये नबी के अलावा कोई भी नहीं दे सकता, तो ये नबी की अताअत करते थे, ये काफिर नबी की अताअत करते थे, जब ही तो आखिरत के लिए अमल करते थे। अगर नबी की अताअत ना करते तो आखिरत का तो तसव्वुर इंसान के पास आ ही नहीं सकता नबी के बगैर, ठीक है। लेकिन ये किस नबी की अताअत करते थे, कौन से नबी की अताअत करते थे? ये अपने दौर से पहले गुजरे हुए नबियों की अताअत करते थे, ठीक है। ये अपने दौर से पहले गुजरे हुए नबियों की अताअत करते थे, उस नबी की अताअत नहीं करते थे जिस नबी को अल्लाह ने इनके पास भेजा, ये उसका इनकार करते थे, पिछले नबियों की अताअत करते थे। इनकी वो अताअत अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं की गई, राइट। तुम्हारे सामने ईसा अलैहिस्सलाम आ गए और तुम कहते हो कि मैं ईसा को नहीं मानूंगा, मैं मूसा को मानूंगा। तुम्हारा मूसा को मानना कबूल नहीं है क्योंकि अब तुम्हारे सामने ईसा आ चुके हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है, गलत कह रहा हूं मैं? जब ईसा आ गए तो मूसा के मानना काफी नहीं है, ईसा को मानना पड़ेगा और ईसा की माननी पड़ेगी अलैहिस्सलाम, ठीक है। उसी तरीके से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो अब मूसा और ईसा की मानना तुम्हारे लिए काफी नहीं है, कबूलियत के लिए काफी नहीं है, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना पड़ेगा। और उनकी मान करके आखिरत के अमल करोगे तब तो आखिरत के अमल तुम्हारे मकबूल होंगे, ठीक है, वरना नहीं मकबूल होंगे, ठीक है। तो ये जो आखिरत के लिए अमल करने वाले काफिर होते हैं ना, ये अकल की बुनियाद पर नहीं आखिरत के लिए अमल कर रहे होते हैं, बल्कि ये किसी ना किसी नबी की बात मानकर आखिरत पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन वो नबी उनके जमाने वाला नबी नहीं होता बल्कि गुजरे हुए जमाने वाला नबी होता है, ठीक है। बात क्लियर हुई? ये जरा बहुत ही, यानी आपको मैं सच बताऊं, ये नुक्ता मेरे ज़हन में आपकी अभी इस बात करने से पहले आई ही नहीं था, क्योंकि पहले तक जो ये बात लोगों को समझाई है क्लासों के अंदर, वो ये समझाई है कि इनके आमाल इसलिए कबूल नहीं होते थे क्योंकि ये रसूल की अताअत नहीं करते थे बल्कि अपने नफ्स की अताअत करके आखिरत के लिए अमल कर रहे होते थे, ठीक है ना। रसूल की अताअत नहीं करते थे, रसूल की बात नहीं मानी उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये बात कि वक्त के नबी की बात नहीं मानी, जबकि और बल्कि पिछले नबियों की बात मानी, ये बात अभी आपकी क्लास के दौरान ही, ठीक है, पहली दफा ये बात करी, राइट। क्यों? इसलिए कि आखिरत के अमाल, आखिरत के लिए क्या अमाल किए जाते हैं, कैसे अमाल किए जाते हैं, ये सिर्फ नबी बता सकता है, ये इंसान का नफ्स नहीं बता सकता, ठीक है। तो इस वजह से ये जो अमल करते थे ये किसी ना किसी नबी की बताई हुई बात ही पर अमल कर रहे होते थे, लेकिन वो नबी गुजरा हुआ नबी था, वो मौजूदा नबी नहीं था, ओके। तो उस गुजरे हुए नबी की अताअत काफी नहीं थी, इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है ना। बात तो मैंने बजाहिर नहीं करी है, लेकिन ये बजाहिर नहीं है, ये हकीकत में नई बात नहीं है, ठीक है ना। कोई मुफ्ती साहब, कोई आलिम साहब, कोई शेखुल हदीस साहब, कोई शेख साहब इसका इनकार तो नहीं कर सकते, आप कर सकती हैं इसका इनका इनकार, आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए ये बात नई नहीं है, ठीक है ना। ये बात तो वही असल बात है, ठीक है, कि भाई जो नबी आपके सामने आ गया उसकी अताअत करोगे तो कबूलियत होगी, पुराने नबियों की अताअत करना जो है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अच्छा, अब ये बात अगर आपके समझ में आ गई, ठीक है, कि काफिरों के जो फिरके आखिरत को मानते हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे, ओके। तो अब अगला सवाल ये है कि यहां पर जो ये जो मामला है, वकालु रब्बना इन्ना अताना सादतना, ठीक है ना, जिसको के ब्रैकेट्स में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, खुलासा तफसीर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है ना, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ब्रैकेट्स में क्या लिखा है कि उनकी बात मानना, बात मानना और इत्तबा करना हमारे जिम्मे जरूरी था। और हम भी तो बार बार यही बात आपको समझा रहे हैं आजकल, क्या बार बार समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूली पे बात रोकी नहीं है। इस आयत के अंदर तो अतीउर रसूल तक बात है ना, लेकिन दूसरी आयत भी वो कुरानी की तो आयत है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। उलिल अम्र कौन होते हैं? छोटे लोग तो नहीं होते हैं ना, उलिल अम्र जो होते हैं वो बड़े लोग होते हैं, इज्जत वाले लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला ने तो इज्जत वाले लोगों को, लोगों की जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे यानी हुक्मरान होते हैं, ठीक है, क्योंकि औलुल अम्र के अंदर हुक्मरान भी किसी ना किसी तरह फिट हो जाते हैं, राइट। तो अल्लाह ने तो उनकी अतात का हुक्म दिया है, तो फिर भाई जहन्नुम में क्यों जाएंगे उनकी अतात करके, और दुगना अजाब क्यों पाएंगे उनकी अतात करके, जबकि ऊपर से हुक्म आया हुआ था, ठीक है। तो फिर क्यों क्यों अजाब मिल रहा है, क्यों दुगना अजाब मिल रहा है। अंधी तकलीद करते थे, या तकलीद अपने नफ्स की बेस पर की थी, तकलीद या अतात, राइट। यहां पर तो अतात की बात हो रही है, तो बात यही बनती है कि ये जो कहते हैं ना, ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि हमने तो बड़े की बात मान करके ये काम किया, ये झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है ना, ये झूठ बोल रहे होते हैं। इन्होंने किसी बड़े की बात मान के काम नहीं किया होता, असल में इन्होंने अपने नफ्स की बात मानकर काम किया होता, ठीक है ना। तो इनको जो सजा मिलेगी ना, ये बड़े की अतात की वजह से सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, बल्कि इनको सजा मिलेगी नफ्स की अतात की वजह से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बड़े की बात सिर्फ इसलिए मानी, सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि उसकी बात इनके नफ्स को अच्छी लगती थी, यानी इनका नफ्स चाहता था उस बात को करना, बस इनको एक सर्टिफाई एक सर्टिफिकेशन मिल गई कि हाँ जी बड़े भी तो यही कहते हैं, ठीक है। तो गुना एक बहाना मिल गया इनको, एक इनको जो है वो दलील मिल गई अपने नफ्स की बात मानने के लिए, दलील मिल गई और कुछ नहीं हुआ, बात इन्होंने नफ्स ही की मानी, ठीक है ना। इल्जाम लगाते हैं बड़ों के ऊपर, लेकिन हकीकत में तो अपनी मनमर्जी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो नौजवान होते हैं ना, जब वो जब उनकी शादी के वक्त आता है, तो अगर आप उनसे कहें कि भाई शादी आप कैसे करेंगे, सादगी से शादी करेंगे, या जो है उसके अंदर ढोलकियां और ये मेहंदी और मांझा और ना जाने क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी करेंगे, तो आगे से क्या जवाब देते हैं, जरा जो शरीफ घराने वाले लोग होते हैं क्या जवाब देते हैं, अम्मी की भी तो, अम्मी को भी तो खुश रखना है ना, राइट, अम्मी की भी तो बात माननी है ना, राइट। तो अम्मी की मानना तो अल्लाह ताला ने, यानी वालदैन की अतात तो फर्ज है, ठीक है ना, वालदैन की अतात तो जो है बड़ी चीज है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें भरी हुई हैं वालदैन की अतात के बारे में, राइट। वालदैन की फरमा बरदारी का नाम ही दिया जाता है ना, वालदैन की फरमा बरदारी, तो फरमा बरदारी क्या चीज होती है, अतात होती है। तो ये जो वालदैन के ऊपर सारा इल्जाम लगा देते हैं कि जी अम्मी को भी तो खुश रखना है, तो ढोलकी के बगैर मेरी शादी कैसे होगी, राइट। तो ये असल में ना झूठ बोल रहे होते हैं, ये असल में ये खुद ढोलकी करना चाहते हैं अपनी शादी में, ठीक है ना, असल में ये अपनी शादी जो है ना, ये उसमें खुद वो सारे के सारे यानी अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, जो कि ये दूसरी शादियों में जाकर के करते हैं, दूसरी शादियों में जहां ये इस किस्म की हरकतें होती हैं, वहां पे बड़े बड़े मजे से उन यानी सेलिब्रेशंस के अंदर ये शामिल होते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं उनको, तो फिर सोचते रहते हैं कि जी मेरी होगी ना तो मैं भी ये सब कुछ करूंगा, लेकिन जब कोई दूसरा पूछता है तो कहते हैं क्या है, कहते हैं जी अम्मी को खुश रखना है, अब्बू का भी तो ख्याल रखना है, खानदान वालों का भी तो ख्याल रखना होता है, राइट। तो इस वजह से ना ये हकीकत में ये नफ्स की अतात होती है, दूसरों का तो खाली नाम लगाया हुआ होता है। तो इनके झूठ की वजह से जो है ना, फिर इनके ऊपर लानत होती है, और इनको जो है वो दुगना अजाब दिया जाएगा कि अल्लाह के सामने झूठ बोल रहे हो, नहीं, अल्लाह को जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, अल्लाह को नाउज बिल्ला जो है वो 420 कर रहे हो अल्लाह के सामने। ठीक है जी, तो दो दो ही खुदा हैं, दो ही खुदा हैं, राइट, एक झूठा खुदा, एक सच्चा खुदा, ठीक है ना। तो सच्चा खुदा कौन है, वो खुदा जिसने रसूलों को भेजा, ठीक है ना, और रसूलों के जरिए से अपनी सारी की सारी बात पहुंचवाई, और रसूलों के गुजर जाने के बाद इस दुनिया से उसके जो रसूलों के नायब थे उनके सिलसिले को चलाया, ये है सच्चा खुदा, ठीक है ना। और झूठा खुदा कौन है, झूठा खुदा हमारे अंदर बैठा हुआ है जो कि हमारा नफ्स होता है। अब जन्नत मिलेगी सच्चे खुदा की मानने पर, और दोजख मिलेगी झूठे खुदा की मानने पर, ठीक है। अब हमारा फैसला, हमारा इख्तियार है कि हम सच्चे खुदा को माने कि हम झूठे खुदा को माने, ठीक है। दीनदारों में भी ये मामला है, नेकी का शौक है तो चाहे कैसे भी करी जाए, कैसे भी करी जाए, वो अपने नफ्स को खुश करने के लिए नेकी करना जो है ना, वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है, और इससे फिर वो होता है ना, नाम तो लिख जाता है ना, नाम तो आपका फिर नफ्स की अताअत करने वालों में लिखा जाएगा ना। बेशक आप ईमान वाले हैं, आप बुनियादी बातों का इनकार नहीं करते, तो आप ईमान वालों में शामिल हैं, ठीक है ना, लेकिन नाम तो आपका फिर नफ्स की अताअत करने वालों में ही शामिल हो गया ना। यानी जो आपने रास्ता इख्तियार कर लिया वो तो नफ्स की अताअत का रास्ता है, ठीक है ना। अब जब आपने वो रास्ता इख्तियार कर लिया, तो खुदा ना खास्ता अगर आप उस रास्ते में थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो वो जो ईमान वाली बाउंड्री है वो भी क्रॉस कर गए, तो फिर तो आप गए, ठीक है ना, फिर तो हमेशा हमेशा की जहन्नुम में। तो इस वजह से इस रास्ते पर चलना ही नहीं है हमने, नफ्स की अताअत के रास्ते पर ही नहीं चलना, हमने तो दूसरे रास्ते पर चलना है, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है। और उस रास्ते के ऊपर नफ्स नहीं होता, उस रास्ते के ऊपर तो अल्लाह वाले होते हैं, उस रास्ते के ऊपर तो अपना दिल होता है, राइट, कल्ब होता है इंसान का। और कल्ब को सपोर्ट करने वाले जो बाहर वाले यानी एक्सटर्नल सपोर्टर्स होते हैं कल्ब के, ठीक है ना, वो कौन कौन से होते हैं, वो अल्लाह वाले होते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए मामला जो भी इबादतें होती हैं जिनसे कल्ब को तकवीत पहुंचती है। तो दीनदार हो जाना जो है खाली ये काफी नहीं है, बल्कि अताअत जो है ना ये असल है हमारे दीन की। देखें असल जो है ना वो है अताअत, ठीक है, अगर अताअत नहीं है तो फिर आप बड़े यानी घरों के अंदर देखें क्या मसला है, ये सारा का सारा, ये जो इतनी नेक बजाहिर इतनी दीनदार औरतें, इतनी दीनदार औरतें, राइट, लेकिन शौहर की एक बात भी नहीं माननी ना, वो दीनदार क्यों, विद पर्दा कर रही है और आलिमा बन रही है और सबका खैरात कर रही है और सब कुछ करती है, राइट, लेकिन शौहर की एक बात नहीं मानी, हालांकि शौहर जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी अगर बात कहेगा ना फिर भी नहीं माननी, ठीक है। तो ये क्या है, अतात नहीं है इसके अंदर, वो जो नेकियां कर रही है, वो जितना पर्दा कर रही है, वो जितना कुछ कर रही है, वो अपने नफ्स की मान करके कर रही है, राइट, जहां अतात की बारी आई वहां पर इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो ये कौन सा वाला दीन है, ठीक है, तो ये दीन जो है ना ये नफ्स की अतात वाला दीन है, ये अल्लाह की अतात वाला दीन नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तो उलिल अम्र मिनकुम की शर्त लगाई थी, वो हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने, तुमने अल्लाह के हुक्म के बुनियादी हुक्म को ही पूरा नहीं किया, तुम्हारा दीन फिर किस काम का, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा दीन जो है ना इंतहाई जो है ना खोखला किस्म का दीन है, बिल्कुल ही जो है वो यानी ना तो हमने शेख की माननी होती है, ना हमने उलमा की माननी होती है, ना हमने जो है वो जिन लोगों का अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया उनकी माननी होती है, बस ऐसे ही बस चले जा रहे हैं माशाल्लाह दीन के ऊपर। तो खुलासे तफसीर, अच्छा नहीं अभी तो ये आयात हमने पढ़नी है, टाइम है इसी को हम आगे चलाते हैं। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا। कि ए ईमान वालों, ला तकूनु कल्लज़ीन, उन जैसे मत हो जाओ, आदम मूसा कि जिन्होंने अजियत दी मूसा को, فبرأه الله مما قالوا, फिर अल्लाह ताला ने मूसा की बराअत फरमा दी उस बात से जो कि वो कहते, ठीक है ना, यानी मूसा को बेऐब दिखला दिया। وكان عند الله وجيها, और अल्लाह ताला के नजदीक वो वजीह है। या आपको पढ़ता हूँ मैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा, ए ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो यानी तकवा इख्तियार करो अल्लाह ताला का, वकूलु कौलन सदीदा, और कौल सदीद कहो, ठीक है ना, सीधी बात कहो, इसकी तफसीर आगे आ रही है इंशाअल्लाह। युस्लिह लकुम अमालकुम, वो सही कर देगा, संवार देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और बख्श देगा तुम्हें तुम्हारे गुनाह। वमन युति अल्लाह व रसूलहु, और जिसने अताअत करी अल्लाह की और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, बस उसके लिए यानी उसने जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी पा ली, ठीक है। खुलासे तफ़सीर से पहले आपने क्या लिखा है कि अताअत इल्लत के, क्या अताअत इल्लत के आखिरत की कामयाबी की इल्म सबब हुआ। सवाल क्या पूछना चाह रही है कि अतात इल्लत हुई आखिरत की कामयाबी की इल्म सबब हुआ। अच्छा हाँ, मतलब एक तरह से इसको घूम फिर करके घुमा फिरा करके आप जो है वो उसको लिफा को उस पर अप्लाई करें तो कहने को शायद अताज जो है वो लाजमी तौर पर आखिरत तक ले जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि यही मकसूद है इंसान से अल्लाह ताला की, यही डिमांड है आखिरत, ठीक है। और इल्म जो है वो अताअत पर इंसान को उभारता है, ठीक है, कि आप इल्म भी कह सकती हैं उसको, आप जिक्र भी कह सकती हैं, ठीक है, इल्म भी सबब हुआ, जिक्र भी सबब हुआ, ठीक है, क्योंकि जिक्र का भी मकसूद क्या है, अताअत, राइट, इल्म का भी मकसूद क्या है, अताअत, और अताअत जिसने कर ली अल्लाह की, ठीक है ना, अल्लाह के जो भी हुक्म है, अतीउ रसूल भी अल्लाह का हुक्म है ना, और अतीउ उलुल अमर भी अल्लाह ताला का हुक्म है, और जो है वो कौलन सजीदा जो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी, ये भी अल्लाह का हुक्म है, यानी अल्लाह ताला के हुक्मों को जिसने मान लिया तो उसके साथ अल्लाह ताला का वादा है जन्नत का, ठीक है। तो ये गोया के इल्लत हो गई, क्योंकि अताअत के बाद फिर मजीद कोई स्टेप्स नहीं रह जाते, ठीक है ना, उसके बाद अल्लाह ताला का जो वादा है ना, वो वादा एक्शन में आ जाता है और बंदे को जन्नत में डाल दिया जाता है, ठीक है। इल्म के बाद स्टेप्स रहते हैं कि भाई इल्म हासिल तो कर लिया लेकिन अताअत ना करी, इल्म हासिल करने के बावजूद अताअत ना करी अल्लाह की तो जन्नत नहीं मिलेगी, ठीक है ना। उसी तरीके से जिक्र, जिक्र को अगर आपने तस्बीहात की शक्ल में देखा या मुराकबों की शक्ल में देखा तो आपने खूब मुराकबे किए, खूब जो है वो तस्बीहात फेरी, लेकिन अल्लाह के हुक्मों की अदात नहीं करी तो कोई जन्नत नहीं मिलने वाली है, ठीक है, या जहन्नुम से निजात नहीं मिलने वाली, जहन्नुम में फिर भी जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही आपने गोया के नतीजा निकाला कि अदात इल्लत हुई और जिक्र, इल्म और ये सारी चीजें जो है ना, ये सब की सब सबब हुए, क्योंकि ये बिलवास्ता जन्नत तक पहुंचाने वाली है, ठीक है। जैसे वो क्या था, वो गर्दन का आजाद करना जो था वो बिलवास्ता, खुलासे तफसीर, ए ईमान वालों तुम उन लोगों की तरह मत होना जिन्होंने कुछ तोहमत तराश कर मूसा अलैहिस्सलाम को ईजा दी थी, सो उनको खुदा ताला ने बरी साबित कर दिया उस चीज से जो वो कहते थे, यानी उनको तो कुछ नुकसान ना पहुंचा, तोहमत लगाने वाले ही कज्जाब और मुस्तहिक सजा ठहरे, और वो यानी मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के नजदीक बड़े मुअज्जिज़ या मुअज्जज़ पैगंबर थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी बराअत जाहिर जाहिर फरमा दी, जैसे कि दूसरे अंबिया अलैहि सलाम के लिए इस तरह की तोहमतों से बराअत आम है। मतलब ये कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करके उनको ईज़ा ना देना, क्योंकि उनकी मुखालफत अल्लाह की मुखालफत है, वरना उसके नतीजे में तुम खुद अपना ही नुकसान कर लोगे, इसलिए हर काम में अल्लाह और रसूल की अताअत करना, जिसका हुक्म आगे आता है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी हर अमर में उसकी अताअत करो और बिलखुसूस कलाम करने में उसकी बहुत रियायत रखो, कि जब बात करो रास्ती की बात करो, कहो जिसमें अदल और एतदाल से तजावुज ना हो, अल्लाह ताला इसके सिले में तुम्हारे अमाल को कबूल करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, कुछ इन अमाल की बरकत से और कुछ तौबा की बरकत से जो तकवा और कौले सदीद में दाखिल है, ठीक है। तौबा जो है वो तकवा और कौले सदीद में शामिल है, ये सारे, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, और ये समरात अताअत के हैं, और अताअत ऐसी चीज है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा तो वो बड़ी कामयाबी को पहुंचेगा, ठीक है। जैसे कि आयत में वही बात अभी जो है कि अल्लाह ताला का वादा है कि वह मैं यूते अल्लाह व रसूलहू, तो मन क्या है, मन आम है, ठीक है, तो जो भी अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा फकद फाजा फौजन अजीमा, तो तहकीक वो बड़ी, उसने बड़ी कामयाबी पा ली, और बड़ी कामयाबी से मुराद सिर्फ जन्नत है, ठीक है ना, वो इस दुनिया की कामयाबी मुराद नहीं, जन्नत मुराद है, तो ये तो गारंटी है, तो इसी वजह से अताअत जो है ये इल्लत बन गई जन्नत की, ठीक है, अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह के वादे की वजह से, कुरान के वादे की वजह से। मारिफ मसाइल में फरमाते हैं कि इससे पहली आयात में अल्लाह और रसूल की ईजा का मुहलक मुहलिक और खतरनाक होना बयान किया गया था, इस आयत में खास तौर से मुसलमानों को अल्लाह और रसूल की मुखालफत से बचने की हिदायत है, क्योंकि ये मुखालफत उनकी ईजा का सबब है, ठीक है। देखें, बड़ों की जब आप अताअत नहीं करते ना तो बड़ों को तकलीफ पहुंचती है, ईजा पहुंचती है, ठीक है ना। अब अगर वो बड़े तो इस वजह से ना ये जो लोग इस चक्कर में रहते हैं ना कि हमने हर हाल में मम्मी को राजी रखना है, ठीक है ना, तो फिर वो दीन पर नहीं चल सकते, ठीक है ना। उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि अम्मी को राजी तो रखना है, लेकिन अम्मी से बढ़कर के भी तो कोई है ना भाई। कोई कोई तो है जिसने इसको मेरी अम्मी बनाया, कोई तो है जिसने इसके दिल में ये बात डाली कि मेरी परवरिश करे, ठीक है। तो उसकी अतात इनकी अतात से ज्यादा जरूरी है। तो अगर उनकी अतात में ये नाराज भी हो जाए ना, तो मैं इस नाराजगी को बर्दाश्त कर लूंगी, ठीक है ना। अच्छा, उनकी अतात में ये भी तो शामिल है ना कि आप अम्मी के साथ बदतमीजी ना करें, आप अम्मी के सामने उफ ना करें। तो बेशक अम्मी नाराज हो, लेकिन मैं अम्मी के सामने उफ फिर भी नहीं करूंगी, क्योंकि अम्मी के ऊपर जो अल्लाह ताला है उन्होंने उफ करने से मना कर दिया, ठीक है ना। मैं अम्मी के सामने कंधे झुका के खड़ी होंगी, ये नहीं कि जी अम्मी जो है मुझे गुनाह करने के लिए कह रही थी तो अब जो है मैं अम्मी के सामने जो है वो कंधे जो है वो उचका यानी अकड़ के खड़ी हो जाऊंगी, राइट। अम्मी को जो है वो यानी तड़ाक करके जवाब दूंगी, ठीक है, कि आप तो मुझे अल्लाह की इतना फरमानी के ऊपर कहती हैं तो आप तो ऐसी हैं और वैसी हैं और आप जहन्नुम में जाएंगी और आप ये हैं। नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है कि मैंने अम्मी के सामने सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये कौन सी इसके अंदर रॉकेट साइंस है, कौन सा इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में हम आपको बात करें, बिल्कुल ही सिंपलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने कुछ बनाया, हमारी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी है ना, जल्दबाज हैं और हलुआ हैं और मनुआ हैं और पीछे से शैतान भी लगा हुआ है मुस्तकिल, राइट। नफ्स भी अपने अंदर जो है वो हर वक्त जो है नुकसान के चक्कर में ही रहता है। तो इस वजह से ना इतनी सिंपल सिंपल सी किंडरगार्टन लेवल की बातें हैं, जी लेवल की ये सारी बातें, लेकिन ये भी हमें समझ में नहीं आ रही होती और इनके अंदर भी जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन मिस्टेक्स कर जाते हैं, राइट। कौन सी ऐसी इसके अंदर मुश्किल बातें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स हमारे खिलाफ जा रहे होते हैं ना, तो हम इन छोटी छोटी बातों के ऊपर भी अमल नहीं कर पा रहे होते। इससे पहली आयत में अल्लाह और उसके रसूल का तो ये हो गया, पहली आयत में एक वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिसमें उनकी कौम ने उनको ईजा पहुंचाई थी, जिक्र करके मुसलमानों को तंबीह की गई है कि तुम ऐसा ना करना। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि मुसलमानों से कोई ऐसा काम सरजद हुआ हो, ठीक है, जैसा कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। तो जरूरी नहीं है कि मुसलमानों ने ऐसा काम नबी अलैहिस्सलाम के साथ किया हो, बल्कि हिफ्ज मा तकद्दुम यानी होने से पहले ही उससे हिफाजत का इकदाम करना। हिफ्ज मा तकद्दुम का मतलब क्या होता है कि जो आगे आने वाली चीज हो सकती थी उससे पहले ही उसका प्रिकॉशनरी मेजर्स कहते हैं इसको, हिफ्ज मा तकद्दुम प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उनको ये किस्सा सुनाकर हिदायत की गई है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो ईजा वाला मामला है, तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ अगर कोई मुसलमान ये वाला मामला कर देता तो वो तो गया, उसका तो ईमान खत्म, ठीक है। तो पहले से ही रोक दिया पिछले वाकयात सुना सुना करके, ठीक है। अच्छा, एक रिवायत में जो बास सहाबा का मनकूल है तो उसका महमूल, ठीक है, महमूल लिखना चाह रहे थे या जो भी, कि उसका महमूल भी यही है कि उनको इस वक्त इस तरफ तवज्जो ना हुई होगी कि ये कलमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा का मूजिब है, बिलकसद ईज़ा पहुंचाने का किसी सहाबी से इम्कान नहीं, यानी किसी सहाबी ने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का इरादा किया हो, ये तो सहाबी से मुमकिन ही नहीं है ना। जितने किस्से बिलकसद ईज़ा के हैं वो सब मुनाफिकों के हैं, ठीक है, ईमान वालों के वो से नहीं है। हाँ, गलत फहमी से या गलती से कोई ऐसी बात हो गई, जैसे कि वो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के वक्त जो है वो घर में बैठे रहे, वो कोई ईजा पहुंचाने की नियत से, कुछ होते हैं ना भी कुछ लोग, जरा मैं इनको तंग करूँ ना, मैं भी इनके घर से नहीं टलूंगा, कहते हैं ना हम लोग कि हम मैं भी नहीं टलूंगा, मैं भी जरा देखूं कि कितना बर्दाश्त है इनके अंदर। तो इस नियत से भी तो घर में जाके बैठ सकते हैं ना किसी के, ठीक है। कुछ मेहमान होते हैं वो आते हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेते, ठीक है ना। तो कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो कि इरादतन ऐसे कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि भूल चुके होते हैं, उनका ध्यान ही इस तरफ नहीं जा रहा होता कि अच्छा जाना भी था वापस, ठीक है। तो ये सहाबा का मामला है कि वो भूल चूक से उनके साथ ऐसा मामला हो जाता था। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा कर इस आयत की तफसीर बयान फरमा दी है, जिसको इमाम बुखारी ने किताब तफसीर और किताबुल अम्बिया में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हया करने वाले और अपने बदन को छुपाने वाले थे, उनके बदन को कोई नहीं देखता था। जब गुस्ल की जरूरत होती तो पर्दे के अंदर गुस्ल करते थे, यानी किसी ना किसी तरीके से, पर्दे का मतलब ये कपड़े का पर्दा जरूरी नहीं है बल्कि ओट के पीछे, जहां चाहे वो कपड़े की ओट हो, चाहे वो जो है वो पत्थर की ओट हो, चाहे वो दरख्त की ओट हो, जो भी हो, तो उस तरह से ओट के पीछे गुसल करते थे। उनकी कौम बनी इसराइल में ये आम तौर पर रिवाज था कि मर्द सब के सब नंगे होकर नहाते थे, तो बास बनी इसराइल कहने लगे। यानी ये जो इनका मामला था ना, बेलिबास होकर के नहाना, ये यानी रिवाज था इनके यहाँ, इसको वो बुराई नहीं समझते थे। और एक दूसरे के बदन को देखना जो है वो उनके यहाँ एक नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। यानी जिस तरह से आप ने सुना होगा या कि ये जो एबोरिजिन्स, क्या कहते हैं, एबोरिजिन्स कहते हैं, या प्रोनाउंस सही तरह का नहीं आ रहा, जो यानी साउथ अमेरिका के जो एमेजॉन फॉरेस्ट हैं उनके अंदर कुछ ऐसे कबाइल हैं, और अफ्रीका में भी कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं उनके बिल्कुल ही डीप फॉरेस्ट के अंदर, या ऑस्ट्रेलिया में भी सुना है कि ऐसे फॉरेस्ट हैं, वहां पर भी ना ऐसे कबाइल आज भी मौजूद हैं कि जिनके यहाँ लिबास का रिवाज ही नहीं है, ठीक है ना, वो बेलिबास रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही ओरिजिनल अपने हालत में जिस तरह से भी। और वो वैसे नहीं है जैसे अमेरिका यूरोप के अंदर होते हैं ना बेलिबासी वाले लोग, वो लोग नहीं है, वो यानी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक दूसरे को देखना जो है वो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो ये भी ना उस वक्त बनी इसराइल का भी हाल ये हो चुका था कि ये यानी रिवाज था इनके। तो ये जो यूरोपियंस हैं इनके यहाँ भी ना गुसल का मामला अब भी इसी दर्जे पे पहुंच चुका है दोबारा से, वहां पर भी यही मामला है। तो कहने लगे कि कहते हैं कि तो बाज बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जो किसी के सामने नहीं नहाते, उसका सबब यह है कि उनके बदन में कोई ऐब है, या तो बर्स है, यानी लेप्रसी है उनको, या खसियतैन बहुत बड़े हुए हैं, या कोई और आफत है, यानी कोई फिजिकल फॉल्ट है इनके साथ। अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस तरह के उयूब से बराअत का इजहार फरमा दे। तो यानी इन लोगों के जो ये बातें हैं ना, इनको बंद करवा दें, और बिल्कुल ये मामला क्लियर हो जाए कि इनको कोई भी इस तरह का फिजिकल फॉल्ट नहीं है। तो एक रोज मूसा अलैहिस्सलाम ने खलवत में गुसल करने के लिए अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रख दिए। जब गुसल से फारिग होकर अपने कपड़े लेना चाहा, तो ये पत्थर बहुक्म खुदाबंदी हरकत में आ गया और कपड़े लेकर भागने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी उठाकर पत्थर के पीछे ये कहते हुए चले, थौबी हजर, थौबी हजर, यानी ए पत्थर मेरे कपड़े, ए पत्थर मेरे कपड़े। मगर पत्थर चलता रहा, यहां तक कि ये पत्थर ऐसी जगह जाकर ठहरा जहां बनी इसराइल का एक मजमा था। उस वक्त बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को सर से पांव तक जो नंगा देखा, तो बेहतरीन सही और सालिम बदन देखा जिसमें उनका मंसूब किया हुआ कोई ऐब ना था। इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बरात इन अयूब से सबके सामने जाहिर फरमा दी। पत्थर यहाँ पहुंचकर ठहर गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े उठाकर पहन लिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर को लाठी से मारना शुरू किया। खुदा की कसम, उस पत्थर में मूसा अलैहिस्सलाम की जरब से 3 या 4 या 5 असर कायम हो गए, ठीक है। यानी पूरा नबी अलैहिस्सलाम ने वाकया वाकया सहाबा को बताया। ये वाकया बयान फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान की इस आयत का यही मतलब है, यानी आयत मस्कूरा कल लदीना आज़ाउ मूसा का। आयत मस्कूरा में मूसा अलैहिस्सलाम की जिस ईजा का जिक्र है, उसकी तफसीर इस किस्से में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। बाद सहाबा इकराम से ईजाए मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा और भी मशहूर है, वो भी इसके साथ जरूर मुलहक है, मगर तफसीर आयत वही दाइज है, राजे है, जो मरफू हदीस में मौजूद है। यानी ये हदीस बिल्कुल सही हदीस है। तो ये जो होते हैं ना खुद से हदीस पढ़ने वाले, या एक्चुअली वो उलमा और हदीस के मुनकर होते हैं, तो वो लोग फिर ऐसी हदीसों को ना फिर इस्तेमाल करके कहते हैं कि ये किस किस्म की वाहियात बातें हैं ना उस बिल्ला, राइट, किस किस्म की बेशर्मी की बातें हैं, नबी अलैहिस्सलाम कैसे ऐसी बातें कर सकते थे, ये तो बाद के लोगों ने बना ली हैं और किताबों में लिख दी हैं। तो इसको बतौर दलील के पेश करते हैं कि ये हदीस का लिटरेचर जो है ना, ये काबिल एतमाद नहीं है, ठीक है ना, इस हदीस के बारे में या इस तरह की किस तरीके की और अहादीस हैं, खुसूसन नबी अलैहिस्सलाम के जो अज़वाजी ताल्लुकात से मुतालिक हदीसें हैं बुखारी शरीफ के अंदर, उनको भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो हदीसें हैं ये बगैर उलमा की सरपरस्ती के, उनकी सुपरविजन के, ये हदीसें जो है वो पढ़ने से मना किया जाता है, क्योंकि बंदा खुद अपनी एक जो उसकी सोच होती है, उस सोच के ऊपर जब इनको परखता है, तो उसको बात समझ में ही नहीं आती, बल्कि उल्टी ही समझ में आ जाती है, ठीक है। तो अब ये जो जैसे हदीस है कि भाई موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایکسپوز کر دیا, ٹھیک ہے. تو بھائی یہ کس قسم کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. تو بھائی ہمارے ہم اس کو اگر رواج کے طور پر دیکھیں, اس زمانے میں یہ رواج تھا, عام بات تھی, وہ ایک دوسرے کو بھی ایسی دیکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو یہ کوئی یعنی کوئی بہت ہی زیادہ نا وہ یعنی کوئی بے حیائی والا معاملہ نہیں ہوگا. ہاں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا معاملہ ایسا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی ہونے کے ناطے ایسی حیا دی تھی جیسے کہ عورتوں کے اندر حیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی ایسے ہی پیدا کیا حیا کے ساتھ. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نبی علیہ السلام کے بارے میں جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی حیا تھی جو مدینہ کی جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں نا ان کی بھی حیا سے زیادہ تھی نبی علیہ السلام کے, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام کی جو فطرت, نبی کی جو فطرت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائی ہوتی ہے. تو زمانے کے رواجوں کے بھی خلاف ہوتی ہے وہ فطرت, ٹھیک ہے. اگر ان کے زمانے میں ایسا معاملہ تھا تو نبی جو ہے وہ ان کے اندر اچھائی ہی اچھائی ہوتی ہے ہر لحاظ سے, لیکن باقی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی. اور اس کے اوپر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ایکسپوز ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے تو ہم کبھی بھی اللہ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے کسی بھی جگہ کے اوپر, حتیٰ کہ اپنے گھرانوں کے اندر بھی جو ہمارے یعنی ایون جو باتھ روم ہے اس میں بھی ہم اللہ کی نگاہ سے تو اوجھل نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم یعنی ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے کوئی بھی چیز, اینی تھنگ, اینی نان لیونگ تھنگ, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی جیسے صوفہ پڑا ہوا ہے, کرسی پڑی ہوئی ہے, دروازہ ہے, دیوار ہے, پتھر ہے, جس طرح ہم دیوار پتھر کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی شرم و حیا والا معاملہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کریں, موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کروایا, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوا نا, ورنہ اللہ تعالیٰ کو ایسا معاملہ کرتے تھے کہ جی کپڑے اتارے بغیر ان کو جو ہے وہ آنکھ کے اندر پھینکنے والا معاملہ ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا کروایا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں, اور ایمان والا جو ہوتا ہے وہ ان کے اوپر اعتراض نہیں کرتا, بلکہ ان کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ قادر ہے, مالک ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں. اور نبی علیہ السلام نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ سچی باتیں بتائی ہیں, جھوٹ کچھ نہیں بتایا. اور اس کے اوپر تیسرا درجہ کیا کہ جو ہمارے اکابرین نے, نیک مخلص اکابرین نے ان باتوں کو ریکارڈ کیا ہے, وہ ریکارڈ بھی بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. یہ صرف نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سارے عیوب سے پاک ہے, نبی علیہ السلام بھی سارے عیوب سے پاک ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات جھوٹ نہیں بتائی, لیکن آگے جا کر کے جو ریکارڈز ہیں وہ ریکارڈز بھی عیوب سے پاک ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو صحیح حدیثوں کو جو محدثین نے جانچ پڑتال کر کے جن حدیثوں کو صحیح کی کیٹیگری میں ڈالا ہے, اب وہ صحیح کی کیٹیگری میں صحیح حدیثیں ہی ہیں, جھوٹے حدیثیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہماری سمجھ کی بنیاد پر وہ حدیث جھوٹی نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. وہ حدیث اسماء الرجال کے تمام مرحلوں سے گزر چکی ہے, جرح اور تعدیل کے تمام مرحلوں سے گزر چکی ہے, تو وہ صحیح حدیث ہے. اب ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, ہمیں اس کو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ بھی ہمیں بات نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ اس دور کے اندر یہ جو تھنکنگ ہے نا یہ بہت زیادہ راجے ہے کہ جی حدیث کو جو جرح و تعدیل پہلے ہو گئی نا, اب اس جرح تعدیل کو آپ اگنور کریں اور اپنی جرح و تعدیل کریں کہ وہ حدیث جو ہے وہ میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں, اور وہ جو ہمارے نارمز ہیں, جو ہماری سوچیں ہیں, ان کے مطابق اگر وہ حدیث ہے تو صحیح ہوگی, اور اگر نہیں ہے تو اس حدیث کو ہم ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نکال دیں حدیث کی کتاب میں سے باقاعدہ. یعنی میں نے ایک جماعت اسلامی کے رسالے کے اندر یہ میں نے خود پڑھا ہے کہ وہ اس ان میں سے کوئی کچھ لوگ تھے, انہوں نے باقاعدہ اپنے یعنی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اثر نو حدیثوں کی جرح و تعدیل کرنی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو عقل کے ترازو پر پوری اترتی ہیں ان کو ہم رکھیں گے اور باقی کو ہم چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ والی حدیث تو پتہ نہیں کیسے ان کے جرح و تعدیل کے, جیسے کہ وہ حدیث بھی موجود اس کا انکار کرتے ہیں نا, یہ کہ وہ کیا تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں وہ اپنی ساری بیویوں کے پاس گئے, تو انکار کر دیتے ہیں اس حدیث کا کہ نہیں کہ وہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی, یہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ایک بندہ جو ہے, حالانکہ ہمارے جو علماء حق ہیں انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا, انہوں نے انکار کر دیا, کیونکہ ان کے لیے عقل زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور اعتماد جو ہے وہ عقل کے بعد اس کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے. چلیں یہاں پر ہم آج کی کلاس روکتے ہیں, باقی انشاءاللہ بھی کلاس پڑھیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.